आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोने निगम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष में गोरखपुर में एकता यात्रा एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन हेतु आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय हर शिक्षण संस्थान में अनिवार्य करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ है।
याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं, उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टेच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर के नगर निगम परिसर से एकता यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गोलघर, धर्मशाला पुल और असरन चौक होते हुए गीता वाटिका पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। श्री योगी ने जन समस्याओं के त्वरित व प्रभावी समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। देश अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हम बता रहे हैं कि वंदे मातरम की भावना ने भारत की सीमाओं से परे जाकर विश्व भर के क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए कैसे प्रेरित किया। एक रिपोर्ट।
वंदे मातरम का जोशीला नारा भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समुद्रों और महाद्वीपों को पार करते हुए प्रवासी भारतीयों में भी देशभक्ति की लौ चलाता रहा है। 22 अगस्त 1907 में स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। मैडम कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज पर वंदे मातरम अंकित था। ठीक दो वर्ष बाद वर्ष 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लंदन में फांसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। इन शब्दों ने देश के लिए बहादुरी और बलिदान का शाश्वत संदेश दिया। इसी वर्ष पेरिस के भारतीय देशभक्तों ने वंदे मातरम नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसने दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता और एकता का संदेश फैलाया। इसके बाद अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कदम रखा, जहां उनका स्वागत वंदे मातरम के जयकारों से भव्य जुलूस निकालकर किया गया। और इसी प्रकार यूरोप से अफ्रीका तक वंदे मातरम भारत के संघर्ष की धड़कन बन गया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं आनंद पाठक।
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में कहा कि 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है, ताकि किसी भी तकनीकी बाधा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर के सातों शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। ये कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का होगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बजट उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज की कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
पेंसिल, रबड़, शार्पनर, नोटबुक, ग्राफ बुक और मानचित्र जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर कर की दर पहले के 12% से घटाकर 0 कर दी गई है। इसी प्रकार रबड़ पर जीएसटी की दरों को पहले के 5% से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउच जैसी वस्तुओं पर जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब 5% जीएसटी कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है। दृष्टि बुनियादी आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
वाराणसी के छावनी स्थित रणबांकुर स्टेडियम में लगातार तीसरे दिन भी आज अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित हुई। भर्ती प्रक्रिया के तहत टेक्निकल पद के लिए कुल 1052 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 866 अभ्यर्थियों ने रेस में भाग लिया और 349 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।